संक्षिप्त इतिहास हम लोग इसका समझ रहे हैं, और उस क्रम में जो संक्षिप्त इतिहास हम समझ रहे हैं उस क्रम में हम कुछ कुछ बातें समझ चुके हैं। कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, ये पहले हमने पढ़ा। बैक्स्टर कंपनी के बारे में पढ़ा कि इन्होंने पहले टेलीफोन पर ऑर्डर्स लेने शुरू किए थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के बारे में कुछ समझा बूझा, और फिर 1995 से 2000 तक क्या क्या हुआ है इसको कुछ समझा कि की कॉन्सेप्ट्स आए। की कॉन्सेप्ट्स हमने आपको कुछ बताए थे, कुछ मुख्य जो बातें आई कॉन्सेप्ट्स वो हमने आपको बताए थे कि नहीं? नहीं बताए थे। अच्छा, तो की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या आए, जैसे शॉपिंग कार्ट आया, पेमेंट गेटवे आया, पहले भुगतान नहीं हो पाता था, शॉपिंग कार्ट नहीं हो पाता था, और बहुत सारे रेडीमेड ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर्स आने लगे, जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं थे, तो वो सब चीज़ें हमारे पास धीरे धीरे 1995 से 2000 के बीच में आई। उद्देश्य क्या था? फ्रिक्शन फ्री कॉमर्स। फ्रिक्शन फ्री माने हिंदी में तो कहेंगे संघर्ष रहित, घर्षण रहित, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये फ्रिक्शन फ्री कॉमर्स हम लोगों का उद्देश्य था। फ्रिक्शन फ्री का मतलब ये हुआ कि जब हम कुछ लेना चाहें तो हमको मिल जाए, ज़्यादा झगड़ा झंझट ना। और इसके लिए हम लोगों ने लोअर सर्च कॉस्ट के, आसानी से सामान मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। अब कोई सामान लेना पड़ता है तो अब जाइए कटरा सिविल लाइन्स, कहीं कहीं धक्का खाइए, इंटरनेट पे क्या है, बड़े आराम से जाइए, क्लिक क्लिक कीजिए, मिल जाएगा। या डिसइंटरमीडिएशन के किससे खरीदें, कोई कोई भाव बता रहा है, कोई कोई भाव बता रहा है, सीधे कंपनीज खरीद लीजिए। डिसइंटरमीडिएशन माने मध्यस्थों को हटाना, और मूल्यों की पारदर्शिता, ये जो हुआ प्राइस ट्रांसपेरेंसी माने मूल्यों की पारदर्शिता, आपको मालूम हो जाएगा कि क्या भाव, कौन कौन सा सामान कहाँ मिल रहा है, और किसी के पास कोई अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है तो वो भी आपने हटा देना था, ताकि अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ किसी को न मिल पाए। इसको कहते हैं अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंसोलिडेशन समेकन जब हुआ तो हम लोगों ने क्या देखा कि व्यवसाय उन्मुख बात होने लगी। इससे पहले क्या बात हो रही थी? इससे पहले यह बात हो रही थी कि जिसके पास तकनीक है वही उछल कूद मचा रहा है, वही आगे बढ़ा चला जा रहा है। व्यवसाय जानता है या नहीं जानता है इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन 2001 से 2006 के बीच में क्या सामने आई हमारे पास कि जिसको व्यवसाय पता है वही ई कॉमर्स में आ रहा है, क्योंकि जो सिर्फ तकनीक जानता है वो बिजनेस नहीं कर पा रहा था। दूसरा, जो पारंपरिक पुरानी कंपनियां थी, लार्ज बिजनेस हाउसेस थे, उन्होंने अपना ई कॉमर्स में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया, ठीक है। तीसरा आया कि जो नई कंपनियों में पैसा लगाने वाले लोग थे उन्होंने पैसा लगाना कम कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि ये ई कॉमर्स आसानी से चल नहीं पाता है। जो उत्पाद या सेवाएं हमारे पास आई वो और जटिल आने लगी। जटिल का क्या मतलब? कि धीरे धीरे विशेषताएं बढ़ने लगी, विशिष्ट उत्पाद या विशिष्ट सेवाएं हमें मिलने लगी। और अगला आया, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग, माने जो सर्च इंजन हमारे होते हैं जैसे गूगल है, उसके माध्यम से विज्ञापन देकर हम कैसे व्यवसाय को बढ़ाएं, ये शुरू हो गया। इंटरनेट पर जो बिजनेस किया हमने उसमें ईमेल, प्रोडक्ट को दिखाना, उत्पादों को दिखाना, डिस्प्ले, खोजने पर विज्ञापन दिखाने लगना, ये सारी बातें आने लगी। और अब क्या हुआ 2007 से आज तक, अगला चरण जो आया, तृतीय चरण, मान लीजिए प्रथम चरण तो ये हुआ प्रीकर्सर, प्रीकर्सर हो गया, प्रथम चरण यह आ गया इन्वेंशन, द्वितीय चरण आ गया समेकन, और तृतीय चरण आ गया री इन्वेंशन माने पुनरुद्भव, कुछ ऐसे ही होगा पुनरुद्भव, ठीक है री इन्वेंशन, ये तृतीय चरण आ गया। इसमें क्या हुआ कि कुछ चीजों का बहुत तीव्र गति से विकास हुआ, रैपिड ग्रोथ हुई। किस चीज की? एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स माने इंटरनेट पर जो सामाजिक नेटवर्क बने हुए हैं उनकी तेजी से विकास होने लगा। दूसरा जो मोबाइल उपकरण है इनका विकास हो गया, तो इससे हमें ई कॉमर्स करने में मदद मिली। तो तीसरी बात आई कि अब हमें स्थानीय कॉमर्स शुरू हो गया, लोकल कॉमर्स शुरू हो गया। लोकल कॉमर्स मैंने आपको कुछ थोड़ा सा बताया था पहले भी। दूसरी चीज महत्वपूर्ण क्या हुई कि अब जो मनोरंजन से संबंधित सामग्री थी उसको भी बनाकर इंटरनेट पर डाला जाने लगा और उसके माध्यम से भी पैसा कमाया जाने लगा, वो राजस्व का स्रोत बना। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या हुई कि जो विपणन है मार्केटिंग, इसमें बदलाव आ गए। कैसे बदलाव आ गए? कि अब सामाजिक, मोबाइल, स्थानीय, इन सब को मिला जुला कर विपणन शुरू हो गया। आपने कोई भी चीज ढूंढी, आप जैसे गूगल पे ढूंढें तो आपको पता चलेगा, आप देखेंगे कि गूगल पे ढूंढेंगे और जब आप फेसबुक पे जाएंगे तो उसी चीज का विज्ञापन फेसबुक भी दिखाने लगेगा, उसी चीज का विज्ञापन आपकी ईमेल पे भी आने लगेगा। तो ये क्या हो रहा है? ये कोऑर्डिनेटेड माने कोऑर्डिनेटेड क्या कहेंगे, समन्वयक, ठीक है, समन्वयित प्रभाव, वो समन्वित प्रयास होने लगे, ठीक है। और फिर एनालिटिक टेक्नोलॉजीज आ गई। एनालिटिक टेक्नोलॉजी माने विश्लेषण करने की तकनीक आ गई। विश्लेषण करने की तकनीक का क्या मतलब है कि कौन सा ग्राहक क्या खरीदता है और क्या खरीद सकता है, ये कंप्यूटर जानने लगा, कंप्यूटर समझने लगा कि कौन सा ग्राहक क्या खरीद रहा है और क्या और खरीद सकता है, इसके बाद क्या खरीद सकता है। तो ये एनालिटिक टेक्निक है। जैसे आप अभी रेल का टिकट बुक कराइए, मान लीजिए दिल्ली से चेन्नई का या इलाहाबाद से चेन्नई का, तो रेल वाले ही तुरंत आपको चेन्नई के होटल दिखाने लगेंगे। जाहिर है कि अगर आपने टिकट खरीदा है तो आपको चेन्नई में माने मद्रास में रहने की जगह चाहिए होगी, ठीक है। हवाई जहाज का टिकट बुक कराइए तो तुरंत आपको दिखाएगा कि आप होटल ले लीजिए, टैक्सी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आप बुक माई शो से जो सिनेमा की टिकट बेचता है उसे टिकट खरीदिए तो तुरंत आपको दिखाएगा, पॉपकॉर्न भी यहीं से बुक कर लीजिए, पेप्सी भी यहीं से बुक कर लीजिए, तो वो आपको समझने लगा कि आप और क्या ले सकते हैं। बहुत सारे जो उम्मीद थी, मेनी अर्ली विजन्स नॉट फुलफिल्ड, जो प्रारंभिक उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। ऐसी भी बातें हुई जो प्रारंभिक उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। लिखते चलिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा आ जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें लिखते चलिए, मान लीजिए ये सब साउंड वाउंड ना आ पाया तो फिर कैसे करिएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए। तो जो प्रारंभिक उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। क्या कौन कौन सी प्रारंभिक उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई? एक उम्मीद थी कि ये क्या था, घर्षण, घर्षण रहित वाणिज्य। तो कुछ तो घर्षण रहित वाणिज्य हुआ लेकिन पूरा घर्षण रहित वाणिज्य नहीं हो पाया, ठीक है। अभी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है और बहुत उलझने हैं, आसान नहीं हो गया, रह गया है। दूसरा इसी के अंदर जो घर्षण रहित कॉमर्स नहीं पूरा हो पाया, इसमें क्या बातें थी कि वो उपभोक्ता जो कीमत को महत्वपूर्ण नहीं मानता, कीमत क्या होता है, सेंसिटिव,
संवेदनशील,
हाँ, कीमत संवेदनशीलता जिसकी नहीं है, जिसको कहता है पैसे की बात नहीं तुम अच्छा सामान दो, जो कहता है पैसे की बात नहीं अच्छा सामान दो, ठीक है, मूल्य संवेदी या मूल संवेदनशीलता जिसमें नहीं है, वहां पर समस्या उठ खड़ी हुई। इंटरनेट पे तो हर चीज सस्ती है, हमें चाहिए अच्छी, अच्छी का पता नहीं कहां मिलेगी, अच्छी का पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। दूसरी बात क्या आ गई कि कंसिडरेबल प्राइस डिस्पर्शन, इंटरनेट पर भी एक ही चीज के बहुत सारे दाम मिलने लगे, माने महत्वपूर्ण मूल्य विचलन, इसको दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे, महत्वपूर्ण मूल्य विचलन डिस्पर्शन है बहुत। कैसे? जैसे आपने शायद ट्रिवैगो का नाम सुना हो, ट्रिवैगो का नाम सुना है, ट्रिवागो वेबसाइट नहीं, अच्छा विज्ञापन टेलीविजन पे आता रहता है, होटल चाहिए तो ट्रिवागो लीजिए। तो बहुत सारी होटल बुकिंग की वेबसाइट्स हैं जो होटल बुक करती हैं, और ट्रिवागो क्या करता है कि हर वेबसाइट पर कौन सा होटल कितने रुपए में दे रहा है कमरा वो एक साथ दिखाने लगता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरनेट पर भी जो मूल्य विचलन है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है कि हमने सोचा था कि यहाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा आएगी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, लेकिन सच्चाई में क्या हुआ कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा भी नहीं आ पाई। कैसे नहीं आ पाई, यहाँ पर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोगों को पता है और बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है। जैसे अब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी के बच्चों से ज़्यादा अंग्रेज़ी के बच्चे जान रहे हैं क्योंकि वो ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं एम कॉम में ही, और एम बी ए के बच्चे एम कॉम के बच्चों से भी ज़्यादा जान रहे हैं, वो और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जाहिर है कि आप सबसे ज़्यादा मैं जान रहा हूँ, हालांकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मुझसे तो ज़्यादा आपको मालूम होना चाहिए, आप तकनीकी युग के हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि मैं आपसे ज़्यादा जान पा रहा हूँ। का मतलब क्या हुआ कि जो हम सोचते थे कि इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना सबको मिल जाएगी, तो ई कॉमर्स में भी सूचना सबको उपलब्ध तो है लेकिन लोग कितना पा रहे हैं, सबको बराबर अवसर है लेकिन लोग ले नहीं पा रहे हैं, ये एक विचित्र बात और हो रही है। और मध्यस्थ खत्म नहीं हुए, तीसरा पॉइंट आया मध्यस्थों का समाप्त ना होना, मध्यस्थों का समाप्त ना होना, मध्यस्थ अभी भी है। हम सोचते थे कि ई कॉमर्स में मध्यस्थ खत्म हो जाएगा लेकिन ई कॉमर्स में मध्यस्थ खत्म नहीं हुआ, मध्यस्थ अभी भी मौजूद है। चौथा पॉइंट ये हुआ कि हमको लगता था कि जो पहले कर लेगा उसको लाभ मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो पहले कर लेगा उसको लाभ मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं हुआ। जो बाद में कर रहे हैं, फास्ट फॉलोअर्स ऑफन ओवरटेक फर्स्ट मूवर्स, माने जिन्होंने बाद में ई कॉमर्स किया उन्होंने अक्सर पहले ई कॉमर्स करने वालों को पछाड़ दिया, ये भी हुआ, ठीक है। पहले हमें लगता था कि जो पहले कर लेगा भाई वो तो बहुत आगे बढ़ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रह पाया, जो लोगों ने बाद में किया उन लोगों ने पहले करने वालों को पछाड़ भी दिया, ठीक है। सो अब आगे भविष्य के लिए क्या भविष्यवाणी क्या है, प्रेडिक्शंस फॉर द फ्यूचर, भविष्यवाणी क्या है, ठीक है, अगला हेडिंग लिख सकते हैं भविष्यवाणी, या ई कॉमर्स का भविष्य, ई कॉमर्स का भविष्य लिख सकते हैं, प्रेडिक्शंस फॉर द फ्यूचर या ई कॉमर्स का भविष्य लिख सकते हैं। तो पहली बात आई कि सभी वाणिज्यिक गतिविधियों में तकनीक का प्रयोग, सभी वाणिज्यिक गतिविधियों में तकनीक का प्रयोग, ठीक है। दूसरी बात आई वृहत पारंपरिक कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी, ठीक है। तीसरी बात आई ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों से काम करने वाली कंपनियां तेजी से विकास करेंगी, और चौथी बात क्या आई, कुछ अतिरिक्त बातें क्या हैं, एक नियम कायदे कानून और बढ़ेंगे, अभी ई कॉमर्स के लिए उतना कानून नहीं है, कानून आएगा, तथा लागत कम करने के लिए मिले जुले प्रयास किए जाएंगे, लागत कम करने के लिए मिले जुले प्रयास किए जाएंगे। ओके, ये ई कॉमर्स का भविष्य है। अब इसके बाद यहां आ गया थैंक यू, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, तो अब फिर चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। अब चैप्टर नंबर टू दोस्तों बात है बिजनेस मॉडल्स और कॉन्सेप्ट्स की, यानी ई कॉमर्स व्यापारिक प्रतिमान तथा अवधारणाएं, ई कॉमर्स व्यापारिक प्रतिमान तथा अवधारणाएं। मॉडल को प्रतिमान ही कहते हैं ना, नहीं मालूम? अच्छा कोई बात है, स्वरूप कह लो यार, ठीक है, बहुत अच्छा स्वरूप कह लो, ठीक है, ई कॉमर्स व्यापार के स्वरूप तथा अवधारणाएं, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि क्या क्या अवधारणाएं हैं या स्वरूप है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहली जो हमारी हेडिंग है वो है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, यानी ई कॉमर्स व्यापारिक स्वरूप। कौन कौन से स्वरूप होते हैं, तो आइए सबसे पहले देखें कि व्यावसायिक स्वरूप या व्यावसायिक मॉडल का क्या मतलब है, ठीक है। व्यावसायिक मॉडल का क्या मतलब है, पहले एक मिनट अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं फिर हिंदी में समझते हैं। सेट ऑफ प्लान एक्टिविटीज डिजाइन टू रिजल्ट इन अ प्रॉफिट इन अ मार्केट प्लेस का मतलब क्या हुआ कि नियोजित गतिविधियां, या लिख लीजिए नियोजित, सॉरी फिर से बताता हूं, किसी बाजार में लाभ कमाने हेतु की जाने वाली नियोजित गतिविधियों को व्यापारिक मॉडल क्या बताया था आपने, स्वरूप कहते हैं, ठीक है। ये तो समझ रहे हैं कैसे लाभ कमाया जाए, वो लाभ कमाने के लिए अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस मॉडल हो गया, व्यापारिक स्वरूप हो गया। अब आप कोई व्यापारिक स्वरूप मुझे बता सकते हैं जो आप कहीं आस पड़ोस में देखते हो कि लाभ कमाने के लिए ये किया जा रहा है, देखिए ये ऐसे ऐसे होता है तो इससे लाभ कमा लेते हैं लोग, कोई व्यापारिक स्वरूप आपकी निगाह में? कुछ भी बोलो बेटा। ठीक है, दाल की मंडी, ठीक है, कन्फेक्शनरी की दुकान, मूंगफली वाला, मिठाई वाला, रेस्टोरेंट, कोई भी दुकान जहां आप पैसा दे के कुछ सामान या सेवा ले रहे हैं, वो इसीलिए तो किया जा रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, कुछ कुछ गतिविधियां हो रही हैं, कुछ क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रियाओं का समूह हो गया, बाजार में हो रही है, उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, बस यही है बिजनेस मॉडल, ठीक है। हम बिजनेस से कैसे मुनाफा कमाएं, यही बिजनेस मॉडल हो गया। इतना बात समझते हैं, ओके। अब आइए देखें कि इसके कुछ उदाहरण क्या हैं, ठीक है। प्रमुख व्यावसायिक क्या है, स्वरूप, ठीक है, प्रमुख
रूपरेखा,
अरे रूपरेखा लिख ले यार, ठीक है। आप मॉडल भी लिख दोगे तो भी चलेगा, माँ पे वो ऐसे लगा के, ठीक है। तो अब कौन कौन से हैं, एक है एड ऑन मॉडल, आप इसको एड ऑन मॉडल ही लिख लो, एड ऑन मॉडल, ठीक है, एड ऑन स्वरूप। एड ऑन स्वरूप का क्या मतलब हुआ कि आप पहले से कुछ बेच रहे हैं, अब इसके अलावा अपन ने कुछ और बेचना शुरू कर दिया, जैसे सागर रत्ना दक्षिण भारतीय खाना बेच रहा था, ठीक है, उसके बाद उसने उत्तर भारतीय खाना भी बेचना शुरू कर दिया, एड ऑन है कि लोग डोसा खाने आते हैं, अब जो लोग नान और वो तंदूरी रोटी और मटर पनीर और ये सब खाना चाहते हैं उनको नहीं मिल रहा था, तो खाना तो बन ही रहा है, किचन तो है ही, खिलाने वाले हैं ही, मेज है ही, ग्राहक है ही, तो लाओ ये भी बना देते हैं। बात समझ रहे हैं, दिस इज समथिंग नोन एज एड ऑन स्वरूप मॉडल। दूसरा है विज्ञापन स्वरूप, ठीक है, एडवर्टाइजिंग मॉडल, यानी आप कहां से पैसा कमाएंगे, लोगों का विज्ञापन करके। खिलाड़ी लोग देखते हैं ना आप, वो अपनी टी शर्ट पर भी लिखाए रहते हैं तो पैसा मिल रहा है, विज्ञापन मॉडल हो गया, वहां से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तीसरा हो गया एफिलिएट, एफिलिएट माने संबद्धता या संबद्धता लिख लीजिए, संबद्धता स्वरूप, यानी हम किससे जुड़े हुए हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाइए तो वो किसी एक पैथोलॉजी पे भेजेगा ना कि जाइए वहाँ जाके खून की जांच कराइए, तो वो दोनों एक दूसरे से पैसा कमा रहे हैं, ये हुआ एफिलिएट मॉडल। फिर तीसरा हुआ, सॉरी चौथा हुआ नीलामी स्वरूप। लोग कहाँ से रुपया कमाते हैं? नीलाम करके, कुछ भी बेच रहे हैं उसको नीलाम कर दिया, नीलाम से पैसा कमा लिया। नीलामी समझते हैं? नीलामी समझते हैं? देखा है कभी फिल्मों विल्मों में? ओके। फिर है, अभी इसका हिंदी मुझे नहीं मालूम, इसको ही अंग्रेजी में लिख लीजिए, बेट एंड हुक मॉडल। बेट एंड हुक मॉडल, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप एक कोई सामान खरीदते हैं तो आपको दूसरा सामान खरीदना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा, एक खरीदा दूसरा खरीदना ही पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर खरीद, वो कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा तो क्या करना पड़ेगा? टोनर खरीदना पड़ेगा, कार्टेज किए बिना गुजारा नहीं होगा कि हो जाएगा। या लड़कों ने रेजर खरीदा तो ब्लेड लेना पड़ेगा कि नहीं? बिना ब्लेड के तो रेजर चलेगा नहीं, जिस कंपनी का रेजर खरीद लिया उसी का ब्लेड भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेट एंड हुक मॉडल, एक चीज आपने ली तो दूसरी चीज आपको लेनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए जो कंप्यूटर प्रिंटर बनाने वाली कंपनियां हैं, प्रिंटर सस्ता बेच रही हैं और टोनर महंगा बेच रही हैं कि उसी से पैसा कमा लेंगे। फिर क्या है डायरेक्ट सेल्स मॉडल, माने प्रत्यक्ष विक्रय स्वरूप, प्रत्यक्ष विक्रय स्वरूप, डायरेक्ट सेल्स मॉडल या प्रत्यक्ष विक्रय स्वरूप। प्रत्यक्ष विक्रय स्वरूप क्या हुआ? जो कोई भी दुकान बेच रही, सीधे सीधे माल बेच रही। नेक्स्ट क्या हुआ? फ्रेंचाइज स्वरूप, इसको भी फ्रेंचाइजी लिखी है हिंदी में, इसका कुछ मालूम नहीं है, हिंदी में भी फ्रेंचाइजी लिखते हैं, फ्रेंचाइज स्वरूप, ठीक है। मैंने कोई बड़ी कंपनी अपनी दुकानें धीरे धीरे खोल रही है स्थानीय लोगों की मदद से, इसको फ्रेंचाइज स्वरूप कहते हैं। जैसे सागर रत्ना भी फ्रेंचाइज है, और कोई फ्रेंचाइज का नाम बताएंगे?
सारा
की फ्रेंचाइजी। एक एक करके बेटा हाथ उठा के बताइए। हबीब पार्लर, जावेद हबीब फ्रेंचाइज है, ठीक है। ये तमाम फ्रेंचाइज मॉडल से चलते हैं। फिर इसके बाद है पे एज यू गो मॉडल, माने उपयोग के साथ साथ भुगतान, लिख लीजिए उपभोग के साथ भुगतान स्वरूप, उपभोग के साथ भुगतान स्वरूप, माने जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही पैसा लगेगा, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। फिर इसके बाद है रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, माने आवर्ती राजस्व स्वरूप, आवर्ती राजस्व स्वरूप, माने हर बार आपको कुछ कुछ पैसा देना पड़ता रहता है। जैसे वो कंप्यूटर में वो होता है ना एंटीवायरस, हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा। फिर फ्रीमियम मॉडल, माने शुरू में आपको कुछ मुफ्त देंगे और बाद में आपसे पैसा लेंगे, इसको फ्रीमियम ही लिख लीजिए, फ्रीमियम, ठीक है। पहले आपसे कुछ पैसा लेंगे और बाद, पहले आपको फ्री देंगे और फिर कुछ पैसा लेंगे, इसको कहते हैं फ्रीमियम मॉडल। और आखिर में एक मॉडल है इंटरनेट बबल मॉडल, इंटरनेट बुलबुला स्वरूप, ठीक है। बबल माने बुलबुला, ठीक है, इंटरनेट बुलबुला स्वरूप। इसका क्या मतलब हुआ कि जब चाहा नया व्यवसाय शुरू कर दिया, जब चाहा जैसे शुरू कर दिया। इसके बाद बच्चों कुछ कम लागत वाले वो स्वरूप भी हैं बिजनेस मॉडल में, कम लागत स्वरूप, ठीक है, लो कॉस्ट मॉडल। लो कॉस्ट मॉडल कौन कौन से हैं? जिसमें एक हुआ बैंक कार्ड शुल्क, बैंक कार्ड शुल्क। दूसरा हुआ कुर्सी पर विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग ऑन सीट्स। तीसरा हुआ लॉटरी टिकट विक्रय, चौथा हुआ उड़ान बीमा, फ्लाइट इंश्योरेंस, उड़ान बीमा। पांचवा हुआ रेल टिकट विक्रय, अगला हुआ प्राथमिकता सीट, प्राथमिकता सीट, प्रायोरिटी सीट, वही बताता हूं एक एक करके सब बता दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हुआ अतिरिक्त सामान का बढ़ा हुआ शुल्क, अतिरिक्त सामान का बढ़ा हुआ शुल्क। अगला हुआ पसंदीदा कार का उच्च शुल्क, प्रिफर्ड कार हायर रेट्स, पसंदीदा कार का उच्च शुल्क। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं। बैंक कार्ड चार्जेस, माने बैंक वाले कहते हैं कि हमारे कार्ड पर कम पैसा लगेगा, एनुअल फीस हमारी 300 रुपया है, दूसरा कहेगा हमारा 250 रुपया, तो ये बैंक कार्ड चार्जेस हो गया। दूसरा कहते हैं एडवर्टाइजिंग ऑन सीट्स, माने हवाई जहाज पे यात्रा करिए, ट्रेन में यात्रा करिए, तो सीट के पीछे विज्ञापन दे देंगे, तो वहां से कुछ पैसा पैदा कर लेंगे, आपकी सीट सस्ते में दे देंगे। तीसरा हो गया लॉटरी टिकट सेल्स, माने आपसे कहेंगे आप हमारे यहाँ से खरीदिए, हर घंटे लॉटरी निकलेगी। मेले ठेले में देखे होंगे कि हमारे यहाँ से खरीदिए, कूपन निकलता है, हर घंटे भी रसीद पर कूपन निकलेगा, लॉटरी टिकट सेल। फिर फ्लाइट इंश्योरेंस, माने उड़ान पर बीमा, तो आप हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको बीमा बहुत सस्ते में दे देंगे। फिर सॉरी ये सेलिंग रेट टिकट्स का क्या मतलब हुआ, ये हमारे यहाँ देश में नहीं लगता, विदेशों में चलता है, हमारे देश में हवाई यात्रा पर ये लगता है कि आप अगर पहले से खरीद लेंगे तो बहुत सस्ता टिकट मिलेगा, बदलता रहेगा रेट भाव, तो बहुत सस्ते सस्ते में भी आप हवाई यात्रा कर सकते हैं। और फिर है प्रायोरिटी सीटिंग, माने अब आप चाहते ही नहीं हम तो यहाँ बैठेंगे तो उसका ज़्यादा पैसे ले लेंगे, ऐसा हो सकता है, अभी उदाहरण के तौर पर आपसे कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि सिनेमा हॉल में जो आप सेंटर कॉर्नर लेते हैं या साइड कॉर्नर लेते हैं, ये जानते हैं कि नहीं, सिनेमा में जाते हैं तो ये सेंटर कॉर्नर ले लेते हैं या साइड कॉर्नर लेते हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद सेंटर कॉर्नर साइड कॉर्नर का पैसा एक्स्ट्रा लगने लगे, कि इसका तो 20 रुपये ज़्यादा लगेगा, क्या हुआ उसका मतलब, प्रायोरिटी सीटिंग। ठीक है, अब आप ये कहिएगा सर उन लोगों को जाके मत बताइएगा, नहीं कल ही से लागू कर देंगे, पैसा हो सकता है। फिर उसके बाद ये है कि अतिरिक्त सामान पर बढ़ा हुआ शुल्क, तो क्या होता है, जैसे हवाई जहाज पे जाइए, ट्रेन में तो उतना नहीं ये लोग ले पाते अभी, और ट्रेन में भी प्रतिबंध है, ट्रेन में आपको मालूम नहीं है लेकिन प्रतिबंध है कि आप स्लीपर में अगर जा रहे हैं तो आप एक यात्री अपने साथ केवल 25 किलो सामान ले जा सकता है, AC3 में जा रहे हैं तो शायद 40 किलो या 35 किलो ले जा सकता है, इस तरह से प्रतिबंध है। उसके ऊपर अगर आप सामान ले जाएंगे एक्स्ट्रा बैगेज, एक्सेस बैगेज, तो उस पर वो बढ़ावा शुल्क ले लेंगे। हवाई जहाज में बड़ा सख्ती से नियम लागू करते हैं, 15 किलो तक फ्री, और जहां 1 किलो बढ़ा तो 100 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, 200 रुपये किलो चार्ज कर लेंगे। ठीक है, फिर एक बताया आपको हमने पसंदीदा कार का अतिरिक्त शुल्क, तो आप टैक्सी लेना चाहते हैं तो टैक्सी में हम आपको ऑप्शन दे देंगे कि कौन कौन सी कारें हैं हमारे पास, तो जो आपको पसंद आए कार उसको, अगर बड़ी कार ले रहे हैं तो उसके ज़्यादा पैसे, कम छोटी कार ले रहे हैं तो कम पैसे। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। अब बच्चों ये हुए कुछ हमारे पास ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, ई कॉमर्स के व्यावसायिक स्वरूप। ठीक है, इसके बारे में कुछ कुछ हम लोग बात कर चुके थे, जैसे व्यवसाय से व्यवसाय की बात कर चुके हैं, व्यवसाय से उपभोक्ता की बात कर चुके हैं, उपभोक्ता से उपभोक्ता की बात कर चुके हैं, उपभोक्ता से व्यवसाय की बात अभी नहीं किया है। उपभोक्ता से व्यवसाय की क्या मतलब बात हुई कि आपने कोई सामान खरीदा, तो जिससे खरीदा उसको मालूम है कि आपने खरीदा, तो आपके पास आ सकता है, कह सकता है कि अरे वो आपने टेलीफोन खरीदा था, बेचना चाहिए तो बेच दीजिए, पुराना हम खरीद रहे। ये हुआ उपभोक्ता से व्यवसाय। या जैसे बिग बाजार में वो आपसे कहते हैं ना, पुराना दे दीजिए नया ले लीजिए, या रद्द अखबार ले आइए, अखबार जो है वो कितना 40 रुपये किलो या 30 रुपये किलो बिक रहा है, उसके बाद बदले में चीनी मिलेगी, कुछ मिलेगा, इस तरह से। तो ये होता है उपभोक्ता से व्यवसाय। इसके बाद है दोस्तों व्यवसाय से सरकार, बिजनेस टू गवर्नमेंट, व्यवसाय से सरकार। व्यवसाय से सरकार का क्या मतलब हुआ कि व्यवसाय को जो चीज़ें सरकार को देनी है वो इंटरनेट के माध्यम से या ई कॉमर्स के माध्यम से वो दे पाए। तो ज़्यादातर जो रिटर्न्स दाखिल करने होते हैं वो आजकल व्यवसाय ऑनलाइन ई कॉमर्स से करता है, पेमेंट ई कॉमर्स से करता है। फिर है गवर्नमेंट टू बिजनेस, माने सरकार कुछ सुविधाएं व्यवसायों को देना चाहती है तो वो गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जा रहा है। इसीलिए इसी तरह से गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जा रहा है। जैसे आपको उसकी सिलेंडर की सब्सिडी कैसे आती है, सीधे बैंक में आ जाती है सीधे, वो भी ई कॉमर्स हो गया। आपसे कोई लेना देना नहीं, आपने एक बार अपना आधार दिया, अकाउंट नंबर दिया, आपको सीधे सीधे आपके खाते में आने लगे। ठीक है, तो ये कुछ ई कॉमर्स के व्यवसाय के स्वरूप हमारे सामने आए। अब दोस्तों एक बात और हम आज पढ़ने जा रहे हैं, वो है व्यावसायिक योजना। ठीक है, लिख लीजिए व्यावसायिक योजना, बिजनेस प्लान। ठीक है, जब हम कोई बिजनेस करने चलते हैं तो उसके लिए कोई योजना हमें बनानी पड़ती है। वो योजना में क्या बातें लिखी जाएंगी, ये छह बातें लिखी जाएंगी। वन, कंपनी, माने कंपनी के बारे में। एक सारांश मत लिखिए, कंपनी लिखिए बस। ठीक है, कंपनी के बारे में। दूसरा, वस्तुओं तथा सेवाओं के बारे, वस्तु तथा सेवाएं। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, बाजार विश्लेषण, बाजार विश्लेषण। पॉइंट नंबर चार, रणनीति एवं क्रियान्वयन, रणनीति एवं क्रियान्वयन। पॉइंट नंबर पांच, प्रबंधन, प्रबंधन। और पॉइंट नंबर छह, वित्तीय योजना। इतनी बातें आपको बतानी पड़ती हैं। ठीक है, ये बातें क्या हैं, एक एक करके आइए समझते हैं। सबसे पहले आप बताते हैं कि कंपनी कौन सी होगी। एकल व्यापारी होगा, साझेदार होगा, संयुक्त उपक्रम होगा, कंपनी होगी, निजी कंपनी होगी, क्या होगा। तो ये व्यवसाय के बारे में आप बताते हैं। दूसरा, आप बताते हैं कि वस्तुएं सेवाएं आप क्या देने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा आप बताते हैं कि किस बाजार में आप काम करेंगे। कटरा में करेंगे, मुफोड़गंज में करेंगे, इलाहाबाद में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, हिंदुस्तान में करेंगे, कहीं कहाँ व्यापार करेंगे, तो बाजार क्या है। और फिर उसका विश्लेषण करते हैं कि इलाहाबाद में क्यों करेंगे, कटरा में क्यों करेंगे, मुफोड़गंज में क्यों करेंगे, उत्तर प्रदेश में क्यों करेंगे। फिर आप अपनी रणनीति बनाते हैं और बताते हैं कि इसका कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा। हम ये नया व्यवसाय आरंभ करने जा रहे हैं, हमारी ये रणनीति है और इसका क्रियान्वयन हम कैसे करेंगे। फिर आप बताते हैं कि कौन कैसे इसको चलाएगा, प्रबंधन कौन कौन दिखेगा, कितने लोग हैं, उनकी क्या काबिलियत है, वो चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, इसके बारे में आप बताते हैं। और फिर छठा आप बताते हैं कि जो वित्त है उसका, उसकी योजना क्या है, कहाँ से पैसा आएगा, कौन कौन लगाएगा, ये इसको बच्चों हम लोग कहते हैं बिजनेस प्लान। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अब दोस्तों इसके बाद है एट की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल, माने व्यावसायिक स्वरूप के आठ